हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में भक्तों, यह जीवन हमें जिज्ञासा करने के लिए मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा श्रीमद् भागवतम में 1.2.89 में बताया जाता है कि इस संसार में आपको जीवन मिला है जिज्ञासा करने के लिए। जिज्ञासा मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मिला है। तो फिर हमने सबसे पहले प्रमाण दिया कि किस से जिज्ञासा, यानी व्हाट इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज, सबसे परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो इसमें हमने पढ़ा कुछ प्रमाण जो प्रत्यक्ष होते हैं उनमें भी वो परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ प्रमाण जिनसे हम अनुमान लगा के करते हैं वो भी परफेक्ट नहीं होते हैं। और वास्तव में परफेक्ट प्रमाण क्या है? शास्त्र। उसके बाद हमने वेद के विषय में पढ़ा और वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में है उसके विषय में पढ़ा। और उसके बाद हमने आगे देखा कि उस शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरु की क्वालिटीज। और शास्त्र में हमने ये पढ़ा कि भगवान क्या है, भगवान के विषय में पढ़ा कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। तत्पश्चात हमने ये भी श्रवण किया कि भगवान एकमात्र कृष्ण हैं और बाकी सब जो हैं वो देवी देवता हैं। फिर अंत में हमने ये भी पढ़ा कि भगवान के जो अवतार हैं वो कैसे अवतार भगवान कैसे लेते हैं, भगवान किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं और क्यों करते हैं। और इसके बाद हमने हमारे धर्म के विषय में पढ़ा जिसका नाम है सनातन धर्म। बाकी सारे धर्म जो हैं वो इसी से निकले हैं, ब्रांचेस हैं। जैसे शुरू शुरू में भगवान ने जो धर्म बनाया है जो सनातन है, जो शुरू से था अभी भी है और अंत तक रहेगा, वही सनातन धर्म है। वही जो भगवान ने जब आदि भगवान जब मतलब भगवान ने जब सृष्टि की रचना की उसके साथ सनातन धर्म का निर्माण किया। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की वासनाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे उन्होंने अपना एक अलग धर्म बना दिया। और ऐसे करते करते आगे से भी बनते जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से धर्म चेंज हो रहा है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो इटर्नल है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई 2000 साल पहले और क्रिश्चियन के जो जीसस क्राइस्ट हैं वो हमेशा कहते हैं दैट आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। मुसलमान धर्म की शुरुआत करने के लिए आए मोहम्मद पैगंबर और वो भी यही कहते हैं आई एम नॉट गॉड, मैं तो खुदा का रसूल हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। उसी तरह सिख धर्म की शुरुआत जो है गुरु नानक साहब से हुई और वो कहते हैं नानक वाको दास है, मैं खुदा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उस भगवान का दास हूँ। शास्त्र प्रमाण है। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के युद्ध के समय, युद्ध के स्थल पर कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े खड़े अर्जुन को बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10.8 दसवां अध्याय श्लोक नंबर 8 भगवान कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, मेरा कारण कोई नहीं है। जो कुछ संसार में आपको भौतिक नजर आ रहा है, जो मटेरियल जो भी नजर आ रहा है और जो स्पिरिचुअल नजर आ रहा है, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे लोक हो, चाहे ग्रह हो, जो सब कुछ आपको नजर आ रहा है उन सब का प्रभु, उन सब का कारण मैं हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। और आगे भगवान कहते हैं कि यह किसी बेवकूफ को समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि साफ साफ भगवान ने कहा इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही इसी बात को भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते हैं, यानी कि उसके लिए आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। और आगे भगवान ने कहा वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा करते हैं। कौन? जो बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब है आज तक जो भगवान कृष्ण को सरेंडर करते हैं, जो कृष्ण को प्रभु मानते हैं। शास्त्र कहता है अक्लमंद वही है, इसका मतलब अगर अक्लमंद वही है तो अपोजिट में देखा जाए तो शास्त्र ये कह रहा है कि जो कृष्ण को सरेंडर नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, उसको संसार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भले कितना ही अक्लमंद बोले, भले कितना एजुकेटेड बोले, भले कितना सोफिस्टिकेटेड आपको नजर आ रहा हो, लेकिन शास्त्र की नजर में वो साफ साफ बेवकूफ है, क्योंकि अक्लमंद तो वो है जो भगवान का भक्त होता है। क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी आप इस योग्य नहीं हो, और इतना पूरा बता ही नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मुसलमान धर्म में मोहम्मद पैगंबर कुरान शरीफ में कहते हैं कि आपको बताने के लिए बहुत गुप्त बातें बाकी हैं, लेकिन नहीं बता पाए। और लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं तो जहाँ श्रीमद् भगवद गीता एंड होती है 18.63 जब एंड हो रहा होता है तो भगवान कहते हैं इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम, अभी जो मैंने तुमको इतना सारा ज्ञान बताया है, गुह्यात् गुह्यतरम मया, ये टॉप सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट गुह्य मतलब सीक्रेट, गुह्यात मतलब उससे सीक्रेट, गुह्यतरम मतलब सबसे सीक्रेट, ये सुपर लेटिव डिग्री भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं गुह्यात गुह्यतरम मया। और आगे अर्जुन को इतनी फ्रीडम देते हैं भगवान, कहते हैं विमिश्रे तदशेषेण, मनुष्य बने हो तुम, पहले इसको पढ़ो समझो, शास्त्र को देखो, पहले इसको देखो तो सही, मैंने क्या कहा है विमिश्रे तद, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि इसको मनन करो, इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि कोई चीज नहीं बचाई, जो कुछ भी बताने की चीजें हैं वो सब बता दी, ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये बता दिया, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए ये बता दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता दिया, कैसे दान देना चाहिए, कैसे किस टाइम पर सोना चाहिए, किस टाइम पर उठना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में तो ये भी बता दिया था कैसे मरना चाहिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरे पास जो कुछ गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने जो कुछ बताने की चीजें वो सारी की सारी तुम्हें बता दी, विमिश्रे तदशेषेण, और तुम्हें मनुष्य बना के ये गीता मैंने तुम्हें दे दी है, उसको सही तरह से समझ लो, उसके बाद भी मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि ये काम करना है, यथेच्छसि तथा करो, एज यू विश सो यू डू, आपको भगवान ने पूरी फ्री विल दी है कि आपकी इच्छा है, मैंने बता दिया कि ये रास्ते पर जाने से तुम्हें नरक मिलेगा, ये रास्ते पर जाने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये रास्ते पर जाने से तुम्हें गौलोक वृंदावन धाम मिलेगा, इट इज योर विश, तुम किधर जाना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि सब कुछ बताने के बाद भी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, गुरु भेजते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधूनां, भक्तों की रक्षा करने के लिए बार बार आते हैं, लेकिन हम इतने नीच हैं कि अपने कर्मों के अनुसार जब हमें सजा मिलती है, भगवान ने बता दिया है कि ये करने की आपको ये सजा मिलेगी, और जब सजा मिलती है तो भगवान से सवाल करते हैं, भगवान से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भगवान तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है मेरे ऊपर इतना जुल्म करते हुए, ये जुल्म हमारे ऊपर जो हो रहा है या हमें जो कुछ भी दुख और तकलीफ भुगतने के लिए मिल रही है वो कृष्ण नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने आप पर कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि जिसने मनुष्य देह जिसको मिली है और वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो कसाई से बढ़कर है। प्रश्न उठता है कि कसाई और जो भक्ति नहीं करते उनका क्यों शास्त्र में उदाहरण दिया गया? देखो जो कसाई होता है ना वो क्या करता है, पशु हत्या करता है, जानवर को मारता है, जानवरों को मार के खाते हैं बेचते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो तो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, वो अपनी आत्मा को मारते हैं, क्योंकि आत्मा का सुख भगवान कहते हैं भगवद गीता में एवं प्राप्य भजस्व माम, इस संसार को प्राप्त किया है अब जल्दी जल्दी मेरा भजन करो ताकि तुम्हारी आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से बच सके, लेकिन जो नहीं करते हैं वो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, तो वो कसाई से भी ज्यादा क्रूर होते हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 18.64 में कहते हैं सर्वगुह्यात्
तामं भूयः शृणु मे परमं वचम् इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
भगवान कितना प्यार करते हैं, भगवान कहते हैं इष्टोऽसि मे दृढमिति, क्योंकि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बताता हूँ, इष्टोऽसि कहते हैं प्रिय हो, बिकॉज आई लव यू, इसका मतलब ये है इष्टोऽसि मे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ततो वक्ष्यामि, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ये सर्वगुह्य तमम भूयः, यानी जितना भी सीक्रेट है सारे सबों में सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट बातें मैंने तुमको बताई हैं, वही और बोलते वापस से सुनो, मैं वापस से जो इन सारी सीक्रेट्स में भी जो बहुत ज्यादा सीक्रेट बात है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्षण में परम वच, और वो परम आदेश है। भगवान श्री कृष्ण 18.64 में अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तक तो बताया वो सब सीक्रेट था, उससे भी सीक्रेट, उससे भी सीक्रेटर सीक्रेटेस्ट जो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो था, लेकिन उन सब सीक्रेट्स में से सर्वगुह्य तमम वो यह क्षण में परम अम्मा चले, लेकिन इन सब में जो टॉप सीक्रेट बात है वो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्यों? इष्टोऽसि मे दृढमिति, दृढ़मिति का मतलब होता है बहुत बहुत ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना आई लव यू सो मच, इसको ऐसे संस्कृत में भगवान ने कहा है इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, मैं तुम्हें इसलिए अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ततो वक्ष्यामि ते हितम्, और तुम्हारी लाभ की चिंता करता हूँ, तुम्हारे मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा लाभ हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और क्या बताया? वो बताया भगवान श्री कृष्ण ने 65 में, मन मना भव मत्थक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन मना भव, सदैव मेरे विषय में सोचो, मत भक्ता मेरे भक्त बनो, मत ध्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, माम मेरे पास ही आओगे, एष्यसि आप मेरे पास ही आओगे, सत्यम ते मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान को बोलने की जरूरत नहीं थी, भगवान बोल रहे हैं, भगवान सत्य हैं, वे कभी झूठ बोल नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है कि जब तक कोई प्रॉमिस नहीं करता, जब तक कोई प्रतिज्ञा बोलता नहीं है कि भगवान की कसम सच बोलना, तब तक उसकी बात तो यकीन नहीं आता, तो भगवान बेचारे भी उनको भी बोलना पड़ रहा है कि सत्यम ते मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ सच कर रहा हूँ, और प्रति जाने मैं तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बस, और कोई वजह नहीं है, भगवान ने कहा मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मेरे पास, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, और आगे तो यहाँ तक कह दिया 66 में कि छोड़ दो जो कुछ भी आज तक करते आए, हमें भगवान के शब्दों पे श्रद्धा नहीं है, अगर श्रद्धा होती ना भगवान के इस वाक्य पे तो आज कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की मूर्ति को जानते नहीं थे हम। भगवान ने साफ साफ कह दिया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासु च, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, अभी हमने प्रकृति के विषय में पढ़ा, प्रकृति का अर्थ है शक्ति, जैसे अगर प्रकृति शक्ति है तो उसका अर्थ है कि शक्तिमान भी कोई है, वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि भगवान की तीन प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं, बताई ना मैंने आपको, एक अंतरंगा शक्ति है, इसको आध्यात्मिक शक्ति भी कहते हैं और पराशक्ति भी कहा जाता है, और इस अंतरंगा शक्ति, इस अंतरंगा शक्ति में तीन शक्तियां हैं, वो अलग टॉपिक है समवेत संधनी सदन, लेकिन एक अंतरंगा शक्ति है और दूसरी बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक शक्ति भी कहते हैं और अपरा शक्ति भी कहते हैं, और उसके बाद उसमें अपराशक्ति में क्या आता है, 24 तत्व बताया मैंने आपको, इसके बारे में क्लियर है। और तीसरी शक्ति है तटस्था शक्ति, और हम जो जीव रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जो दास है ना हम जीव, वो भगवान की तटस्था शक्ति है। अपनी मर्जी है, भगवान भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति में प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं तो इस माया में ही हमें उलझते रहना पड़ेगा। जैसे रेशम का कीड़ा जो है वो अपने लिए अपने मुख से रेशम बनाता है, जैसे रेशम बहुत सारा रेशम बनाता है, एक जाल बनाता है, लेकिन उसकी गलती क्या होती है कि वो अपने निकलने के लिए कोई दरवाजा नहीं छोड़ता। उसी तरह अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो समझो इस जो महामाया का जो जाल है ना उसमें इस तरह फंस जाते हैं कि वहां भगवान तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने ये भगवान की शक्तियों के विषय में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा, मैंने आपको बताया था भगवान श्री कृष्ण ने बताया 9.10 में, माया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचर, संसार में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है और भगवान की आंख के इशारे से चलता है, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे चलता है। ये शक्ति जो है, अब मतलब भगवान ने कहा है कि मैं प्रभु हूँ, बाकी सब मेरे दास हैं, तो प्रभु की शरण में आ गए तो फिर दासों से डरने की क्या जरूरत। भगवान साफ साफ कहते हैं मां शुच, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, भगवान ने केवल गीता में कहा नहीं है, महाभारत के युद्ध में दिखा भी दिया है। जब अकेले अभिमन्यु को 7-7 महारथियों ने मिलकर वध किया तो उनमें से सबसे बड़ा हाथ उनमें जयद्रथ का था। अर्जुन ने जब देखा तो प्रतिज्ञा की कि आज संध्या तक मैं इस जयद्रथ का सर्वनाश जरूर करूंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो स्वयं ही आत्महत्या कर लूंगा। जयद्रथ ने जब ये बात सुनी तो सोचा, युद्ध भूमि में आऊंगा तो मारेगा ना, युद्ध भूमि में आऊंगा ही नहीं, आज तो मैं छुप जाऊंगा, और पाताल में जाकर लोहे के पिंजरे में छुप कर बैठ गया। इधर अर्जुन ने पूरा युद्ध क्षेत्र ढूंढ लिया, हर जगह पर तलाश किया, पर जयद्रथ कहीं न मिला। आखिर संध्या का समय आ गया और अर्जुन स्वयं ही आत्महत्या करने लगा। ये समाचार जब जयद्रथ को मिला तो उसने सोचा, वाह अर्जुन आत्महत्या कर रहा है, ये दृश्य तो अपनी आंखों से देखना चाहिए, अपने दुश्मन को मरते देखने का तो आनंद ही कुछ और होता है। और जैसे ही वो ये देखने के लिए युद्ध भूमि में आया तो अर्जुन को कहा, जयद्रथ जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, अर्जुन मुझे मारने चला था, प्रतिज्ञा लेकर बैठा था, अब स्वयं ही अपने हाथों से मर रहा है। जयद्रथ बहुत हंसा। उसी समय आश्चर्यमय घटना हुई, जो सूर्य डल गया था, संध्या हो गई थी। आश्चर्यचकित बात है कि सूर्य ढला नहीं था, वो सर के ऊपर था, दोपहर के समय था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, मैंने सूर्य को इशारा किया था, वो छुप गया था। ये रहा सूर्य और वो रहा जयद्रथ, दुश्मन तुम्हारे सामने है, वध कर दो उसका। भगवान श्री कृष्ण ने इतना कहा और अर्जुन ने गांडीव से जयद्रथ का वध कर दिया। देखिए इस प्रसंग से ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को इशारा किया और वो छुप गया। बताइए कृष्ण के आदीन है या नहीं यह प्रकृति, और कृष्ण ने इशारा किया तो वापिस आ गया। इतना ही नहीं, श्रीमद भागवतम शास्त्र प्रमाण है, तृतीय सिकंद में भगवान कपिल अपनी माता देहूति को कहते हैं, मद भयात वाति वातो यम सूर्य तपन्ति मद भयात, दयत अग्नि वर्षत इंद्र मृत्युश्चरन्ति मद भयात। मद मेरी जितने भी देवी देवता है ना, अपनी माँ को कौन कह रहे हैं, कपिल देव अपनी माता देहूति को कहते हैं, माता ये जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी प्रकृति है, मेरे भय के कारण सारा काम कर रही है। जब तक किसी का डर ना हो तो बच्चा सुबह उठता भी नहीं है। तो फिर यहाँ साफ कह रही, जो प्रकृति हर चीज नियम से चल रही है, वो भगवान के भय से चल रही है और भगवान के इशारे से चल रही है। भगवान साफ साफ कहते हैं, देखो भगवान तो सोते हैं, भगवान कोई कार्य नहीं करते। अभी हमने पढ़ा क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में सो रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु सो रहे हैं, कारण दक्षाई, शाही का मतलब होता है सोना। कभी कभी ये सवाल उठता है कि भगवान वहां पर सोते हैं तो प्रकृति चलती कैसे है। तो आपने देखा होगा कि मछली अपनी आंखों से अपने बच्चे को पोषण देती है, कछुआ अपने मन से अपने अंडे को पोषण देता है, बहुत दूर होता है, लेकिन अपने अंडों के ऊपर, जैसे पक्षी जैसे अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं और उसे सींचते हैं, ऐसा नहीं, वो बहुत दूर से उसे सींच रहे होते हैं अंडे को, अपने मछली और है ना ये कछुआ जब, परंतु जब कछुआ अंडों से बहुत दूर होता है, मन में उसका सेवन करता है, तो इतने साधारण जीव भी यदि ऐसा कर सकते हैं तो भगवान तो भगवान है, वो अपने धाम में बैठे बैठे इस प्रकृति को इशारे से कैसे नहीं चला सकते। हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के इन समस्त कार्यों पर। आप सबको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि भगवद गीता में मुख्य 5 विषय है, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां काल। इसमें से ईश्वर के विषय में हमने बिल्कुल सही सब कुछ समझ लिया कि ईश्वर क्या है, निराकार भी है, साकार भी है, परमात्मा भी है, उसकी सारी क्वालिटीज भगवान को हमने समझ लिया। जीव के विषय में समझा कि आत्मा क्या है, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है और चाहे तो बहिरंगा शक्ति में जा सकती है, कभी अंतरंगा शक्ति में जा सकती है, ये जीव है। और प्रकृति के विषय में मैंने आपको बताया जो 24 तत्व जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, जो कि भगवान के इशारे पर चलती है। अब हमारे 3 टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, बाकी हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, काल और कर्म। ये हम जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद जैसे ही ये हो जाएंगे हम श्रीमद् भगवद गीता को स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि तब तक आप सब जितने भी मेंबर्स हो श्रीमद् भगवद गीता को अरेंज कर लो, ठीक है। आप सबके पास भगवद गीता होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।